ओम शांति। अगस्त मुरली 11 मई 1984, तीसरा ग्रुप, कुमारों से मुलाकात। सभी समर्थ कुमार हो ना, समर्थ हो सदा समर्थ आत्माएं, जो भी संकल्प करेगी, जो भी बोल बोलेगी, कर्म करेगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले, व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता, व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय। अगर समय भी गया तो कितना समय गया। संगम पर सेकंड कितना बड़ा है, सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं होना सदा यह स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त है, तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो, उड़ती कला वाले या चढ़ती कला? चढ़ने में सांस फूल जाता है, थकते भी है, सांस भी फूलता है, और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा, क्या करे कैसे करे, यह सांस फूलना है। उड़ती कला में सबसे पार हो जाते हैं, टचिंग आती है कि यह करे, यह हुआ ही पड़ा है। तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थ आत्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे हैं, मेहनत क्या करे। बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहे। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो, क्या होगा कैसे होगा, यह बोझ है। सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से चलो। 11 मई 1984, अव्यक्त मुरली, तीसरा कुमारों का ग्रुप। बाबा पूछ रहे हैं सभी समर्थ कुमार होना, सदा समर्थ आत्माएं, जो भी संकल्प करेगी, जो भी बोल बोलेगी, कर्म करेगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले, और समर्थ अर्थात शक्तिशाली, बलवान, बलशाली, बलवती, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मजबूत, पक्का और शक्ति स्वरूप, शक्ति रूप, कमजोर नहीं, व्यर्थ नहीं। तो समर्थ, सदा समर्थ आत्माएं, जो भी संकल्प करेगी, जो भी बोल बोलेगी, जो भी कर्म करेगी, वह कैसा होगा, समर्थ। और इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प। संडे की मुरली, पहला प्रश्न, अंतिम समय क्या करना है, किस चीज पर ध्यान देना है, अपने संकल्पों को पावरफुल बनाने में। यहां संकल्प किया, फल उधर। तो संकल्पों में इतनी शक्ति है, सारा कार्य जो करना है संकल्पों पर करना है। संकल्पों को शक्तिशाली बनाओगे तो बोल स्वतः ही शक्तिशाली बनेंगे और कर्म स्वतः ही शक्तिशाली बनेंगे। तो सभी समर्थ कुमार होना, समर्थ हो सदा समर्थ आत्माएं, जो भी संकल्प करेगी, बोल बोलेगी, कर्म करेगी, वो सदा ही शक्तिशाली होगा, समर्थ होगा। तो समर्थ का अर्थ, बाबा हमेशा राइमिंग सिस्टम जोड़ते हैं, राइम, समर्थ व्यर्थ। तो व्यर्थ को समाप्त करने वाले, व्यर्थ का खाता समाप्त, समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता, अभी व्यर्थ पर आए हैं, व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय। अगर सेकंड भी गया तो कितना गया, समय, संग यूग्रम पर सेकंड कितना बड़ा है? सेकंड नहीं है, लेकिन एक सेकंड एक जन के बराबर है। तो एक एक पल का महत्व है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं होना, सदा यह स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं। तो समर्थ के कितने सारे अर्थ बाबा ने बताए हैं। संकल्प समर्थ, बोल समर्थ, कर्म समर्थ, व्यर्थ समाप्त, और व्यर्थ में फिर समय जो है उनका वह भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि एक सेकंड भी एक साल एक जन्म के बराबर है। तो समर्थ कार्य के निमित्त है, तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, समर्थ आत्माएं हैं, उनको अनुभव होगा कि पुरुषार्थ जो हो रहा है स्वतः हो रहा है। बाकी आत्माएं जितनी मेहनत कर रही है उतनी मेहनत का उनको अनुभव नहीं है, स्वतः ही हो रहा है, उड़ने का अनुभव हो रहा है। कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो? मनुष्य के मन में निरंतर उड़ने की इच्छा रही है, मनुष्य के मन में निरंतर स्वप्न देखना और स्वप्न में उड़ना। स्वप्नों पर जितने अध्ययन किए गए हैं उनमें पाया गया है कि वो एक स्वप्न जो बार बार मनुष्य बचपन से देखता है वो है उड़ने का। पहाड़ी पर उड़ रहा है, आकाश के ऊपर उड़ रहा है, समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, बादलों के ऊपर उड़ रहा है। सिगमंड फ्राइड जो है, जिसको जनक कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का, उसने जितने प्रयोग स्वप्न पर किए हैं उतने आज तक किसी ने नहीं किए। उसने पाया कि हर मनुष्य में उड़ने की आकांक्षा होती है, और फिर उसने इस तरह का अध्ययन किया कि कौन से स्वप्न देखने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है। इस तरह का यदि वो स्वप्न देखता है तो उसका स्वभाव क्या हो सकता है। उड़ने पर उसने अध्ययन किया और उसने पाया कि जिन जिन व्यक्तियों को उड़ने के स्वप्न आते हैं बचपन से, वो वह व्यक्ति हुए हैं कि जिनमें बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रही है, एम्बिशियस। इस तरह के जो व्यक्तित्व है वो उड़ते हैं, उड़ने का स्वप्न देखते हैं। तो जिनमें बहुत आगे जाने की इच्छा है, बहुत अधिक जीवन में सफलता पाने की इच्छा है, उनको बचपन से ही उड़ने के स्वप्न दिखते हैं, उड़ रहे हैं। तो ये उड़ना जो है ये प्रतीक है अंदर में छुपी हुई सुप्त आकांक्षा का। बहुत ऊंचा उड़ना, बहुत आगे जाना, ये जो संसार है और संसार की जो छोटी मोटी बातें हैं, इन सब से ऊपर उड़ जाना। और हमारा जो अवचेतन मन है वो शब्दों की भाषा नहीं जानता। हम रोज ये पढ़ते हैं पर याद रहता है क्या? ये पढ़ा या सुना वो उड़ जाता है सब। क्यों? क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स। उसे शब्दों की भाषा समझ में नहीं आती है, और हम उसे शब्दों के द्वारा ही समझाते हैं। हम पढ़ते हैं तो शब्दों को पढ़ते हैं, इसके लिए वो अंत मन में नहीं प्रवेश करता है। उसे केवल एक ही भाषा समझ में आती है, वो है चित्रों की भाषा। इसके लिए जो पढ़ते हो इन शब्दों को नहीं, शब्द गौण है। वर्ड्स आर सेकेंडरी, आइडियाज ट्रेवल फार। शब्दों को चित्रों में देखना है, इन चित्रों में नहीं, किसी और शब्द, इन चित्रों को पिक्चर्स में परिवर्तन कर देना है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं समर्थ आत्मा कौन है, तो हमारे सामने एक चित्र आए एक ऐसी व्यक्ति का कि जो अति शक्तिशाली और जो अति समर्थ है, फिर उसके ऊपर ये सारा हम डाले कि समर्थ आत्मा ये है। तो उसके संकल्प समर्थ, उसके ब्रेन में देखे कि वो संकल्प कर रहा है, वो भी चित्रों के रूप में, वो समर्थ। जो बोल बोल रहा है वह भी समर्थ, जो कर्म कर रहा है वह भी समर्थ। उसके जीवन में व्यर्थ समाप्त हुआ, व्यर्थ कहाँ समाप्त हुआ, तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ समय, ये भी समाप्त हुआ। ये है एक पढ़ना, फिर है इसको देखना, इसको हम देख रहे हैं मन की आंखों में, एक चित्र सुनते सुनते ही हमारे मन के सामने एक चित्र उभर रहा है, पढ़ते पढ़ते ही एक चित्र खड़ा हो रहा है एक ऐसी आत्मा का, और फिर मन को आदेश देना कि ये तुम हो, ये हो तुम, तो फिर ये अंदर जाएगा। क्योंकि केवल और केवल चित्रों की ही भाषा अंतर्मन को समझ में आती है, उसे शब्द समझ में नहीं आते। शब्द चेतन मन समझता है, याद रखने की कोशिश करता है, उसमें बहुत मेहनत है, उसमें लॉजिक है, रीजनिंग है, बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअल पावर कितना किसका है, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा, जिसका कम उसका कम। परंतु अवचेतन की भाषा जो है वो सिंपल है। बाबा जो प्रयत्न कर रहा है वो अवचेतन के स्तर पर इस ज्ञान को लेके जाने का प्रयत्न कर रहा है। एक बार ये ज्ञान चित्रों में परिवर्तन हो जाए तो वो हम देखेंगे उसको, जिसको अनुभव कहते हैं या अनुभव हो जाए। तो यहाँ जो बात हो रही है, कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ सकते हैं। स्वयं को उड़ता हुआ देखना, चाहे वो फरिश्ते स्वरूप में देखो, अंतवाहक शरीर में देखो, लाइट के कार्बन में देखो, या केवल आत्मा उड़ रही है, दूर दूर तक जा रही है, मैं शरीर, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके उड़ रही हूँ। केवल जब योग कमेंट्री करते हैं तभी नहीं, केवल जब योग में अमृत वेला बैठते हैं या शाम को बैठते हैं तभी नहीं, दिन भर ही स्वयं को उड़ता हुआ देखना, चित्र देखना स्वयं को कि हम उड़ रहे हैं। कल्पना ऐसी है कि कल्पना का कोई बाधा नहीं है उसमें, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अपरिसीम है वो, कोई सीमा नहीं है उसकी, हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। और कल्पनाएं बहुत शक्तिशाली होती है, वास्तविक क्रिया से भी कल्पना शक्तिशाली है। वास्तविक क्रिया में जो आनंद नहीं है वो कल्पना में आनंद है। अमीर बन जाने में वो आनंद नहीं है, पर देखना कि मैं अमीर बन गया हूँ उसमें अधिक आनंद है। तो अपनी कल्पना शक्ति जो है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, इसको कार्य में लाना है। जो भी ज्ञान हम पढ़ते हैं, लक्ष्य ये नहीं रखो कि बहुत कुछ पढ़ना है, सारी की सारी मुरली पढ़ना है, इतना भी लक्ष्य नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ो, परंतु पढ़ते पढ़ते ही उसे चित्र में रूपांतरित कर दो, उसको देखना है। तो कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो देखो स्वयं को उड़ता हुआ आकाश के ऊपर, आकाश में, बादलों में, समुद्र के ऊपर, झील के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, पंछी की तरह हम उड़ रहे हैं, ये देखना। पंख है हमारे पास, पक्षी जो है वो जब यहां बैठा है, सपोज यहां कोई पक्षी है, उसको अगर कहो उड़ो, वो कहता है मुझे उड़ना नहीं आता है। अरे वो जब प्रयत्न करेगा, जब आकाश में जाएगा तब उड़ने लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि मेरे पास भी पंख है। सुनता है जब नील गगन की अनिवार्य पुकार, तब वो चुरुंगन है, उसको याद आता है कि मैं भी उड़ सकता हूँ, एक डाली से दूसरी डाली तक। तब तक नहीं, देखी डाली देखी पात, देखी करते हैं हिलमिल आपस में बात, तब तक कि माँ क्या मुझको उड़ना आया, माँ कहती है कि नहीं चुरुंगन तो फरमाया। जब उस कविता का जो पक्षी है उसको आकाश से पुकार आती है, डिवाइन कॉल, उड़ो उड़ो उड़ो, तब उड़ने लगता है और फिर देखता है स्वयं को उड़ते हुए। उड़ना ये पहले मानसिक घटना है, बाद में वास्तविक होगी वो एक दिन। तो कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ उड़ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले, हमेशा बाबा कहते हैं चढ़ती कला में जाओ। अभी कंपैरिजन है, तुलना है यहाँ उड़ती और चढ़ती कला की। चढ़ने में मेहनत है, क्लाइंबर्स एंड फ्लायर्स, दोज़ हू क्लाइंब एंड दोज़ हू फ्लाय, क्या पसंद है, क्लाइंब करना पसंद है या फ्लाय करना पसंद है? क्लाइंब करने में नुकसान क्या, नुकसान तो नहीं, क्या होता है, मेहनत और
टाइम
ज्यादा लगता है चढ़ने में, सांस फूलता है, और पहले से अगर कोई बीमार हो तो ज्यादा सांस फूलता है, फिसलने का चांस बहुत ज्यादा है, आपको कम है, फटाफट चढ़ जाते हैं देवेंद्र भाई, तो कितना भी बड़ा पर्वत हो उनको बहुत ज्यादा आदत है। तो चढ़ने में एक तो मेहनत, पसीना आएगा, सांस फूलेगा, शक्ति ज्यादा जाएगी, टाइम ज्यादा जाएगा और थकावट होगी, बीच बीच में रुकना पड़ता है, इतना ज्यादा सांस फूलता है कि रुकना पड़ता है कई बार, रुको फिर चढ़ो, रुको फिर चढ़ो, रुको फिर चढ़ो, ये है चढ़ना। उड़ना जो है वो सहज है, बस एक बार मोमेंटम में आ गया कि बस वो उड़ते रहेगा व्यक्ति। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जो वस्तु इनर्शिया में है वो वैसे ही इनर्शिया में रहेगी, जो व्यक्ति अचल है, उड़ नहीं रही है, एक जगह स्थिर है, वो उसी स्थिति को मेंटेन करेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, या फिर जो व्यक्ति इन मोशन है, चल रही है, वो वस्तु मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोके ना। द थिंग विच इज इन इनर्शिया विल कंटिन्यू टू बी इन इनर्शिया व्हाइल द थिंग विच इज इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जो व्यक्ति जड़ है, कोई काम नहीं कर रहा है, यही नियम जीवन का भी नियम है, काम नहीं कर रहा है वैसा ही कर रहा है, वो वैसा ही रहेगा, और जो निरंतर गतिशील है वो और गतिशील होगा या गतिशील ही रहेगा जब तक कोई ऊपर से उसको एक्सटर्नल फोर्स शायद रोके नहीं तब तक। तो जो उड़ने की जिसको आदत है वो उड़ता ही रहेगा, और जिसको न उड़ने की आदत है, अउड़ान की जिसकी अवस्था है, वो वैसे ही अउड़ान की अवस्था में रहेगा। परवाज, हिंदी में शब्द है परवाज, परवाज अर्थात उड़ना, परवाज करना, उड़ान भरना। तो ऐसी आदत लगा देना है कि हम निरंतर गतिशील ही रहे, तो वो गतिशील निरंतर ही रहेंगे। उड़ना मानसिक क्रिया बना दे कि हम मानसिक रीति से निरंतर उड़ते ही रहे, जो हमारा कल था उससे हम आज हम आगे हैं, और जो आने वाला कल है वो हमको आज से आगे देखे, ये है उड़ना। तो समर्थ आत्माएं सदा उड़ती रहेगी, कौन सी कला वाले हो, उड़ती कला या चढ़ती कला, आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग। चढ़ने में सांस फूल जाता है, थकते भी है, सांस भी फूलता है, उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने, चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा। सांस फूलना अर्थात क्या, यहां बाबा ने कहा सांस फूलना अर्थात क्या करे, कैसे करे, यह सांस फूलना है, प्रश्न पूछना, ये होगा तो कैसे होगा, प्रश्नों से भरा हुआ जो चित्त है, इतने सारे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न है जीवन में, हर बात के लिए प्रश्न ही प्रश्न खड़े हैं।
एक प्रश्न नए प्रश्न को जन्म देता है, इतने सारे प्रश्न है। तो चढ़ना अर्थात साथ फूलना, और साथ फूलना अर्थात क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, कैसे करें?
इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं मन में, वास्तव में अध्यात्म प्रश्नों का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। कोई कोई व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रश्न ही पूछने की आदत हो जाती है, कोई भी दिखा बस प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न, वो वही व्यक्ति ज्यादा प्रश्न पूछता है जिन्हें उत्तर से भय लगता है। वास्तविक उत्तर शायद उन्हें भी पता है, परंतु वो प्रश्न उत्तर से इतने भयभीत है, उस उत्तर से बचने के लिए ही प्रश्न पूछते हैं, बचने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उत्तर तक पहुंचे, उनकी ही आंतरिक इच्छा है कि हमें उत्तर तक नहीं पहुंचना है, उत्तर उन्हें भी पता है परंतु उस उत्तर से बचना है, इसके लिए प्रश्न पूछते रहते हैं, जो भी देखा उसको प्रश्न पूछो, इसको प्रश्न, उसको, और प्रश्न वही है पुरुषार्थ कैसे करें, जीवन में समस्याओं से मुक्त कैसे हो, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये कैसा किया जाए, वो कैसे किया जाए, ये ऐसे हजारों प्रश्न है। इस समय में पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, अमृत वेला कैसे होना चाहिए, योग कैसे करें, सेवा कैसे करें, ये प्रश्नों से भरा हुआ चित्त है। उत्तर नहीं पता ये हो नहीं सकता, सारे उत्तर पता है सबको, परंतु भय है कहीं उत्तर पता चल जाए तो फिर करना पड़ता है, तो फिर बचना है। उसकी विधि है प्रश्न पूछो, बहुत सारे प्रश्न पूछो, एक प्रश्न पूछो उसका जो उत्तर है दैट इज द जंपिंग ग्राउंड, जंपिंग बोर्ड। जंपिंग बोर्ड पता है, स्विमिंग पूल देखा है, वहां एक ऐसा होता है, यहां पे खड़े रहो यहां से कूदो नीचे, दैट इज नोन एज जंपिंग बोर्ड। एवरी आंसर इज द जंपिंग बोर्ड फॉर न्यू क्वेश्चंस। जो भी प्रश्न उत्तर दोगे वहां से नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वो जंपिंग बोर्ड है, वहां से कूदते हैं तो दूसरे प्रश्नों के ऊपर। अभी कुछ भी उत्तर दो उसमें से नए प्रश्न तैयार करते हैं, एक एक प्रश्न का एक उत्तर, उस एक उत्तर से दस नए प्रश्न, उस दस नए प्रश्नों के जो जो उत्तर है दस, उस एक एक उत्तर से और सौ नए प्रश्न। ये चक्र है। क्या करे, कैसे करे, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। कितने भी लो, किसी से भी लो, सौ श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को इकट्ठा करो और सौ श्रेष्ठ पुरुषार्थियों से सौ उत्तर लो, फिर भी आत्मा असंतुष्ट ही रहेगी। क्या करना है, क्योंकि जो करना है वो नहीं करना है वास्तव में, उसका भय है, इतना भय है, उस भय को छुपाने का एक प्रयत्न है प्रश्न। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है पर वास्तविक यही है। उमंग में कोई अंतर नहीं है, और ही बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो उड़ती कला में सबसे पार हो जाते हैं। उड़ती कला में ये प्रश्न ही नहीं है, उड़ती कला में क्या होता है, टचिंग ही आती है कि यह कर, यह हुआ ही पड़ा है, स्वतः ही पता लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी से क्या पूछना है, अब स्वतः ही पता चलता है कि ये किया अब ये करो, ये किया अब ये करो, अब ऐसा किया अब ऐसा करो। बुद्धि को इंट्यूशन पावर, सिक्स्थ सेंस, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये इतना शार्प हो जाता है कि स्वतः ही पता लगने लगता है कि अब ये किया जाए, अब ये किया जाए, अब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। दादी प्रकाश मणि किसको पूछते थे क्या, अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए, अब सेवा में क्या करूं, पूछने की दरकार ही नहीं, स्वतः ही पता लगने लगता है क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे और जब अपने उनको लेक्चर सीरीज चालू था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक जगह से पहला जो स्पीच दिया उससे बहुत प्रसिद्ध हुए, और फिर सबने अपने अपनी जगह बुलाना चालू किया, और फिर हर जगह घूमते थे दो तीन साल। एक सभा जो थी उन्होंने कहा था कि मैं रात में जब सोता हूं, अब दूसरी जगह सुबह सुबह स्पीच करने जाना है, लेक्चर देने, क्या देने जाना है वो पता नहीं है, परंतु जैसे उनके गुरु उनके स्वप्न में आ रहे थे और कुछ चित्र दिखते थे, और जब स्पीच देने खड़े होते थे तो वो जो चित्र देखा है उनको केवल अब शब्दों का रूप देना था, बस वो क्या है उसकी तैयारी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तैयारी करके जाओगे भाषण देने के लिए तो वो कुछ और ही हो जाता है, वो थोड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, केवल जो चित्र देखे उनको इसके रूप में परिवर्तन करना है। एक सभा में वो बोल रहे थे तो उस सभा में एक चित्रकार बैठा था, वो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था अमेरिका का, और उसने सोचा कि ये जो भाषण दे रहे हैं इनका भाषण देते देते मैं एक चित्र निकालूं। तो उस चित्रकार ने एक चित्र निकाला भाषण देते हुए, उस चित्र जब देखा तो इतना आश्चर्य था कि वो ऐसे खड़े हैं पोडियम और भाषण दे रहे हैं, उस चित्र के पीछे उसने और एक दूसरे व्यक्ति को देखा, उसका भी चित्र निकाला, जो दूसरा व्यक्ति जो उनके पीछे खड़ा था वो उनका गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो केवल उसको दिखे, उस चित्रकार को, कि जैसे कि ये व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, बोलने वाला तो पीछे खड़ा है, शब्द मात्र इसके जो बोल रहा है वो तो पीछे खड़ा है। तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसकी भी तैयारी नहीं, वो स्वतः ही हो रहा है। क्या करे कैसे करे, ये प्रश्न पूछते पूछते व्यक्ति को इन प्रश्नों से ही मोह उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न होती है इन प्रश्नों से। उत्तर क्या है वो उसे भी पता है पर जानना नहीं चाहता, इसके लिए प्रश्न खड़े किए।
यहाँ पीछे खड़ा दिखाई दे रहा।
तो सेकंड में सफलता की मंजिल को टचिंग आती है कि यह करे यह हुआ ही पड़ा है। पूछना बंद, सबसे पहले बाबा के कमरे में बैठो, जो भी प्रश्न है वो वहां रखो, स्वतः ही पता चलेगा ये करना है ये नहीं करना है। यह हुआ ही पड़ा है, केवल इतना ही नहीं, यह हुआ ही पड़ा है, यह भी आश्वासन
पड़ा है।
तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले इसको कहा जाता है समर्थ आत्मा। यह एक दूसरी परिभाषा है, पहली परिभाषा थी समर्थ आत्मा की। समर्थ आत्मा अर्थात जिसके बोल जिसके संकल्प और कर्म समर्थ है। दूसरी परिभाषा समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ जहां समाप्त हो गया है। तीसरी परिभाषा समर्थ आत्मा अर्थात सेकंड में सफलता को पाने वाले। चौथी परिभाषा समर्थ आत्मा अर्थात सदा उड़ने वाले। पांचवी परिभाषा समर्थ आत्मा अर्थात क्या कि उन प्रश्नों से परे। और एक परिभाषा टचिंग आती है उनको, वो है समर्थ आत्मा है। तो बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे मेहनत क्यों करे, मेहनत उसे पसंद नहीं है। वो चाहता है कि मैं जो टचिंग दे रहा हूं ये बस कैच तो करे। बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहे। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो? क्या होगा कैसे होगा यह बोझ है, क्या होगा कैसे होगा यह बोझ है। कल सुना ना सेकंड पार्ट, वो जो है बंद चुके हैं, वो जो आत्मा अज्ञानवश अनजाने में बंद चुके हैं, तुम अगर जानबूझकर बंधते हो तो यह भी बोझ होगा, पश्चाताप का बोझ। वो किसी भी तरह से बंधना है, फिर जरूरी नहीं कि केवल व्यक्ति, यहां तो सूक्ष्म बातें चल रही है। क्या क्यों भी बोझ उसी से बंध चुके हैं, माइंड कंडीशन हो गया है। कोई भी चीज उसको कहो तो 10 प्रश्न पहले ही खड़े करके रखता है, बजाय इसके कि वो कैसे सुलझाया जाए कैसे किया करा जाए, ये नहीं सोचता। अगर किसी को कोई नया काम दिया जाए कि ये करो, तो सबसे पहले ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, कैसे करूं क्या करूं, ये सारे प्रश्न खड़े हो जाते। एक दूसरा है कि मुझे इसको करना है, फिर पूछना इसको कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए ये करने के लिए। तो बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहे। जब बाप रास्ता दिखा रहे हैं, डबल लाइट बना रहे हैं, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो, क्या होगा कैसे होगा यह बोझ है। प्रश्न पूछने की आदत, प्रश्नों से आकर्षण, प्रश्नों से आसक्ति, प्रश्नों से मोह, ये सबसे सूक्ष्म मोह है। ये भी गर्व किससे? हाँ, दूसरा एक प्रश्न, क्लास चल रही है, उस क्लास में प्रश्न पूछना हाथ खड़ा करके, ये जो है ना, ये जो है इसमें प्रश्न पूछने से ज्यादा मैं पूछ रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो पहला प्रश्न दादी के क्लास में हमने प्रश्न पूछा, दादी ने क्या जवाब दिया, उस जवाब से हमें कोई लेना देना नहीं है, उस जवाब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है, मैंने प्रश्न, मेरा प्रश्न, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर अभी जो थोड़ी देर पहले दादी जो बोल रही थी उसमें आ चुका है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और क्या आने वाला है वो पता भी है, पर उससे लेना देना नहीं है। मैं पूछ रहा हूं उसी वो महत्वपूर्ण है। ये जो अहंकार और ये जो अभिमान है, ये जब तक है तब तक व्यक्ति संपूर्ण नहीं बनता। महात्मा बुद्ध के पास सुबह सुबह एक सम्राट आया। वो सम्राट ऐसा था, दो चीजें साथ में लेके आया, एक हाथ में कमल और एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा। वह एक ऐसा हीरा था कि उस जमाने में वो हीरा शायद ही किसी व्यक्ति के पास था, परंतु उसकी इच्छा थी, बहुत बड़ा भक्त भी था, उसकी इच्छा थी कि ये हीरा मैं महात्मा बुद्ध को दूं, परंतु सूक्ष्म में यह भी कामना थी कि ये जब मैं इच्छा हीरा दूं तो सारा विश्व जाने कि ये हीरा मैंने दिया है। परंतु क्योंकि भक्त भी था, श्रेष्ठ भावनाएं भी थी, निस्वार्थ भी था, तो दूसरे हाथ में कमल भी लेके गया कि यदि उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो कमल दे दूं। दोनों तरफ से पूरी बंदोबस्त करके गया कि एक तरफ तो हीरा, अगर हीरा स्वीकार कर लिया तो मेरा नाम हो जाएगा, अच्छा चलो नहीं किया स्वीकार तो कमल का फूल। पर वो कमल का फूल भी बेजोड़ कमल का फूल था, ऐसा कमल का फूल था कि उस सीजन में, उस मौसम में, बेमौसम का फल था वो, फूल था वो, कि जो वो भी अगर स्वीकार कर लिया तो भी मेरा ही नाम होगा। भले इतना बहुमूल्य नहीं है जितना बहुमूल्य वो हीरा है, परंतु नाम तो होगा क्योंकि यह मैं की संतुष्टि है। देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो हीरा भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही कमल। उस सम्राट के लिए तो महत्वपूर्ण क्या था, मेरा नाम हो जाए। महात्मा बुद्ध के सामने जाता है, सबसे पहले हीरा सामने करता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं इसको गिरा दो, अंदर से हृदय पीड़ित होता है पर दिखाता नहीं है, गिरा देता है। सोचता है ठीक है इनको ये पसंद नहीं आया, कमल का फूल सामने करता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं इसको भी गिरा दो, फिर तो मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है अब क्या करूं, इन्होंने तो इसको भी स्वीकार नहीं किया। बाद में महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ा होता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं इसको भी गिरा दो। उसको समझ नहीं आता है ये क्या कहा उन्होंने, फिर अचानक से दिव्य प्रकाश जैसे बुद्धि में जाता है, ये उन हाथ को गिराने के लिए नहीं कह रहे, उस अहंकार को गिराने के लिए कह रहे हैं जो ये कमल लाया था और जो वो हीरा लाया था, और यही अहंकार अब इस रूप में नमस्कार के रूप में भी वो अहंकार ही है। जो इशारा हो रहा है वो अहंकार को गिराने के लिए हो रहा है। जब अहंकार गिरता है तब ज्ञान का दिव्य आलोक हृदय में प्रवेश करता है। जब बाप रास्ता दिखा रहे हैं, डबल लाइट बना रहे हैं, तो फिर नीचे क्यों आ जाते हो, क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है, सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से में रहो। तो समर्थ आत्मा की निशानी, आज के मुरली के वरदान में बाबा ने श्रेष्ठ कर्म क्या है उसकी परिभाषा दी है। विश्व के हम आधार मूर्त है, अगर यह स्मृति रहती है तो जो भी कर्म करोगे वो श्रेष्ठ कर्म होंगे। दृष्टि वृत्ति में यदि विश्व के कल्याण शुभ भावना रहती है तो जो भी कर्म होगा वो उच्च कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म, उच्च कर्म, महान कर्म, समर्थ कर्म, कोई भी नाम दे दो, बहुत सारे विशेषण इन कर्म के पीछे जोड़े जा सकते हैं, परंतु भाव एक ही है, महान कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो। तो महान कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म अर्थात समर्थ कर्म अर्थात संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। व्यर्थ में समय के लिए कहा, एक सेकंड भी गवाया अर्थात जन्म को गवाया, और सफल सेवा में सफलता एक सेकंड में प्राप्त करने वाले और सदा उड़ने वाले। तो सदा विजुअलाइज करना है, देखना है मैं उड़ रहा हूं यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। जीवन में समस्या आई तो सोचो, एक चित्र बनाओ जीवन में, ये समस्या जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, कोई भी समस्या, कोई व्यक्ति की तरफ से या कोई परिस्थिति, ये पहाड़ है और हमारा कार्य क्या है, छन्नी लेकर और हथौड़ा लेकर उसको तोड़ना नहीं। कितना समय लगेगा, वो दशरथ मांझी को कितना समय लग गया था, उतना समय हमारे पास नहीं है तोड़ने का, दशरथ मांझी की तरह हमारे पास समय बहुत कम है।
कितना समय
बहुत कम समय है, बहुत कम है। बहुत कितना पूछना, ये प्रश्न का उत्तर पता है, उससे बचने की विधि है, उत्तर सबको पता है कितना, परंतु बचना नहीं चाहते क्योंकि अगर पता चल गया इसके लिए उसको छुपाने की विधि है, पूछो कितना कितना कितना। आप फंस गए आज, हमेशा सबको बताते हो। ये दूसरी बचने की विधि है कि हमारा प्रश्न नहीं है, किसी और का प्रश्न है, जीवन का, हमारे जीवन में ही वो समस्या है कि हमें नींद नहीं आती है रात में। हम पूछेंगे कैसे, मेरा एक मित्र है उसको नींद नहीं आती है, कुछ बताओ।
खुद पट गए।
ओम शांति। आज किसी को बोला है?
आज छुट्टी।
चलो ठीक है, आज छुट्टी। ओम शांति।